बोले पजमान साहब,
क्या
अब हम क्या करें?
मुझे खुद नहीं पता।
ऐसा कब तक चलेगा? एक तो दुकान बंद है, ना पैसे हैं, ना काम है, कारोबार है, कुछ नहीं है। हाजी अब्बास को चाहिए सईद साहब के लिए, यहाँ कोई और काम ढूंढ लें।
पहले से ही वो बहुत परेशान है, तू और परेशान मत कर।
मैंने क्या कहा है?
बेकार में बोलता रहता है ये।
अच्छा बोलने दो।
कालीन तो भिजवा दिए थे।
समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, दुकान खुलती थी कुछ पैसे मिल जाते थे।
मैं क्या कर सकता हूँ रास्ते में?
आजकल तो दुकान भी बंद है, पता नहीं गुजारा कैसे होगा।
ठीक है आएंगे बता दूंगा।
सलाम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब,
क्या हाल है हबीब?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या खबर है?
मैं तो दुकान की वजह से परेशान हो गया हूँ।
क्यों?
हर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, अब ना मैं वहाँ जाऊँगा ना उस दुकान में बैठूंगा।
तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। आज मैंने कुछ कर्जदारों को पैसे दे दिए हैं और उन्होंने अपनी शिकायत भी वापस ले ली।
सच कह रहे हैं आप, आपका बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आपका ये एहसान मैं कैसे अदा करूँगा मेरी समझ में नहीं आता, वरना बाबा ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था।
क्या कह रहे हो, ये फर्ज था मेरा, अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
क्या फायदा, कुछ दिनों बाद कोई और कर्ज खो आके खड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम बाबा ने किस किस दुकान वाले से कर्ज उठाया है।
तुम अपने बाप की जगह होते तो पता चलता तुम्हें।
हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ठीक है हाजी साहब, अब मुझे जाना चाहिए।
तुम कहाँ जा रहे हो?
बस जरा ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर का एक चक्कर लगा के आता हूँ।
अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मामला तय पा गया है तो अभी जाओ दाऊदियान साहब की दुकान पे और वहां से बाकी कर्ज खाओं की लिस्ट लेके आओ।
कर्ज खाओं की लिस्ट? लेकिन क्यों?
जाओ पहले लेके आओ फिर बताऊंगा तुम्हें।
आप पैसे देना चाहते हैं?
हाँ।
आप मुझे इतना भी शर्मिंदा ना करें।
अरे बेटा पिजमान, जाओ जाके अपनी दुकान का ताला खोलो और काम शुरू करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें एक दिन भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ बेटा।
जी ठीक है।
आज पकाने के लिए सब्जी और गोश्त लाई। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? क्या हो गया मेरी बेटी?
ये क्या है? ये तस्वीर तो मेरी है ना?
ये कहाँ से मिली तुम्हें?
ये तो आप बताएं कहाँ से मिली है।
पागल हो गई हो? ये क्या बातें कर रही हो?
ये मेरे बचपन की तस्वीर है।
सिर्फ मुशाबियत है
तो फिर ये आपके पर्स में क्या कर रही है?
ऐसे ही तुमसे मिल रही थी, मैंने उठा के पर्स में रख ली।
और टेलीफोन नंबर जो कालीन फरोज का है, आपने कहा था बाबा का दोस्त है, अब पता चला वो बाबा का दोस्त नहीं है। आप बताती हैं या नहीं, या मैं खुद जाऊं बाद साहब से पूछने?
मल्लिया सब्र करो, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए।
वो जिसे हार्ट अटैक हो रहा है वो मैं हूँ या आप? आप बताती हैं कि नहीं?
मैं क्या बताऊं, ये कैसी मुसीबत आ गई है मेरे सर पे।
ठीक है। मलिहा मलिहा तुम कहीं नहीं जाओगी, रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद सब कुछ बता दूंगी, फकत फकत थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे, थोड़ी सी, मुझे थोड़ा सुकून आने दो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इल्तिजा करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ।
हाँ जनाब, अच्छी चीज तो महंगी होगी, और ये भी तो देखें कि खालिस रेशम से बनी है। आप पूरा बाजार घूम लें, इतना मियारी कालीन नहीं मिलेगा। इस एक कालीन के बाद आप 10 साल कालीन नहीं खरीदेंगे।
क्या कीमत है इसकी?
दाम भी हो जाएंगे। पहले आप एक काम करें, पूरा बाजार देख लें, फिर मेरे पास आराम से आ जाइए।
हाँ इंशाल्लाह आपके ही पास आएंगे।
हाँ हाँ जरूर आइएगा।
अच्छा खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हाजी?
वालेकुम,
कैसे मिजाज है तुम्हारे?
क्या हाल है?
ठीक हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने मेरी दुकान खुलवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये तो मेरा फर्ज था। देख लो, मैंने अपने सारे वादे वफा कर दिए। अब देखना यह है तुम क्या करते हो।
हाँ हाँ बिल्कुल।
मर्जिया DNA टेस्ट कराने के लिए बहुत जिद कर रही है, हर तरह समझाया मगर वो नहीं मानती।
आप कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते कि दोनों तरफ का फायदा हो?
नहीं, ये मामला ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से लोग राजी हो जाएं।
हाजी साहब, क्या आप ये नहीं चाहते कि मर्जिया को उसकी खोई हुई बच्ची मिल जाए?
क्यों नहीं?
अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो मानेंगे? कोई नुकसान नहीं होगा। आप जाके मर्जिया को लेकर आइए, उसके कुछ टेस्ट होने जरूरी हैं। जब वो सब देख लेगी जेबा कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसकी, तो मामला साफ हो जाएगा मेरे ख्याल से।
मुश्किल तो ये है कि वो मेरी गुमशुदा बेटी है, न कि मर्जिया की।
इससे क्या गर्ज के मर्जिया समझेगी कि वो उसकी बेटी है?
तो फिर मैं जेबा के सवालों के जवाब कैसे दूंगा? वो पूछेगी नहीं मुझसे।
हाजी साहब, आपका जोर तो सिर्फ मुझ पर ही चलता है। आप उसके बाप हैं, मेरे ख्याल से किसी भी तरह राजी कर सकते हैं उसे।
चलो ठीक है, ये मसला तो हल हो गया। इससे भी बड़ी एक मुश्किल है।
मतलब?
वो आप हैं।
मैं क्यों?
उस वक्त एक बड़ी कमजोरी मेरी तुम्हारे हाथ आ जाएगी, और जब तुम्हारा दिल चाहेगा मुझे जलील करोगे।
हाजी साहब, आपने अभी एक बहुत बड़ी कमजोरी दे दी है मुझे, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। परेशान ना हो, बाद में बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज।
इंजेक्शन कब लगाया था इसको?
सुबह थोड़ा बुखार था।
आप परेशान ना हो, इसको दांतों की वजह से मोशन है, मैं दवाई लिख देती हूँ।
बहुत शुक्रिया।
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मैं जानता हूँ तुम बहुत मसरूफ हो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है जो बहुत जरूरी है। अगर मैं मर्जिया को राजी कर लूँ कि DNA सिर्फ मेरा और तुम्हारा हो, तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा?
नहीं, वो भी उस सूरत में जब आप उन्हें
ये बताएं कि मैं कौन हूँ।
तुम सिर्फ टेस्ट दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
कैसे संभाल लेंगे? फिर झूठ बोलूं?
नहीं, जरूरी नहीं कि तुम झूठ बोलो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है। हेलो, जेबा फोन काट दिया?
नहीं,
मैं सोच रही हूँ, आप मुझे सोचने का कुछ वक्त दें, मैं आपको फिर फोन कर लूंगी।
ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मैं कहां से शुरू करूं? तुम्हें कैसे बताऊं? मुझ में हौसला नहीं है।
हौसला करना पड़ेगा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है।
ठीक है, बताती हूँ। जानती हो, जब मैंने अखबार में इश्तिहार देखा, मैंने देखा वो तस्वीर तुमसे बहुत मुशाबियत रखती है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें उस खानदान से मिला दूं। आखिर वो तुम्हारा अपना खानदान है, तुमने देख लिया ना, वो लोग कितने अमीर हैं, है ना?
मामा, आपने जो ये कहानी सुनाई है सब मजाक लगता है, आप ऐसी तो नहीं लगती।
हाँ 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 मेरी जान, ये काम मैंने अपनी खातिर नहीं किया बल्कि तुम्हारी खातिर किया है बेटा। जब मैंने देखा कि किवान की माँ,
बस करें मम्मा, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपने किवान और मेरी खातिर ये सब किया? ना तो आप इतनी सादा हैं कि ये सब करें और ना तो मैं इतनी अहमक हूँ कि आपकी बातों पर यकीन करूँ। आप नहीं कर सकती।
ठीक है, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो, देख नहीं रही मैं किस हाल में हूँ?
आप ही? क्या आप मेरा हाल नहीं जानती? मामा, आप मुझे सच बता दें। नहीं बताएंगी? ठीक है, मैं अब्बास साहब को फोन करती हूँ।
नहीं,
ठीक है, फिर मुझे बता। इतना ना सकता है कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, वरना मैं मर जाऊंगी।
ठीक है, ठीक है, सब कुछ बताती हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, तुम मुझसे एक वादा करो। वादा करती हो? करती हो?
कैसा वादा?
वादा करो, जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी, ऐसे जैसे कि तुमने इस लानती इश्तिहार को देखा ही ना हो। तुम एक वादा करो, वादा करो कि मुझे नहीं छोड़ोगी।
मैं क्यों आपको छोड़ दूं?
इसलिए कि तुम हमारी हकीकी बेटी नहीं हो, हमने सिर्फ तुम्हें पाला है। मलिया, मलिया मेरी जान, मलिया, मलिया, मलिया मेरी बेटी, मलिया जान, मलिया। मलिया, कुछ बोलो ना मलिया, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों? मलिया, कहाँ जा रही हो? मलिया रुको मेरी जान, मलिया, मलिया, मलिया दरवाजा खोलो ना, मलिया दरवाजा खोल दो ना, मलिया दरवाजा खोल दो, मलिया बात सुनो।
क्या हुआ, एकदम बाहर जाने का मूड कैसे बन गया?
क्योंकि बहुत दिन हो गए हम दोनों बाहर नहीं गए।
अच्छा, तो फिर कहाँ जाना पसंद फरमाएंगे आप?
वहाँ जहाँ हम सुकून से बातें कर सकें। तुम ऐसी जगह जानते हो?
ठीक है, सुकून की जगह। डीएनए टेस्ट की हमारी नई कहानी है। मुझे यहां लेकर क्यों आई तुम? काश थोड़ा सा इंतजार कर लेती, ये चाय तो मेरे हलक से उतर जाती, फिर सुना देती।
मेहरदार, मैंने मशवरा मांगा है, बताओ मैं क्या करूं?
मेरे मशवरे पर अमल करोगी? ठीक है, जब से तुम्हारे नए बाबा सामने आए, हमारे लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई है। उनसे कहो हमारी जिंदगी से चले जाएं।
ये क्या बात हुई?
तो फिर तुम खुद नहीं चाहती कि मामला हल हो? तुम तो ये चाहती हो कि तुम्हारी मनपसंद बात करूं और तुम्हारी बात की तायद करूं, अगर चाहे वो गलत ही क्यों।
तुम कोई ठीक मशवरा दे ही नहीं सकते।
तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं या तायद करूं, इन दोनों में बहुत फर्क है। तुम अगर चाहती हो कि अपने बाप से जाकर मिल जाओ और उस बीमार औरत को धोखा दो, तो मुझे इस मामले से दूर ही रखो।
मेरे ख्याल में तुम इतने तंग नजर तो नहीं थे?
नहीं, वो तुम्हारे नए बाबा तुम्हें ऐसे ही देखना चाहते हैं।
क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं क्या?
जिस जेबा को मैं जानता हूं, वो हकीकत पर शक नहीं करती थी।
जिस जेबा को तुम जानते हो वो तन्हाई से थक चुकी है। जैसे वो अपनी बेटी के लिए बेकरार है, वैसे मैं अपने माँ बाप के लिए बेचैन हूँ। चाहती हूँ मुझे मेरे अपने मिल जाएं, बस यही।
लेकिन तुमने अपने खानदान को ढूंढ लिया, ये काफी नहीं है?
मैं सिर्फ अपने माँ बाप को देखना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है बताओ? मुझे उनसे छुप छुप कर मिलना पड़ता है, ऐसा कब तक चलेगा?
हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम अपने माँ बाप से क्यों छुप कर मिल रही हो? तुम्हें छुप के नहीं मिलना चाहिए। तुम क्यों ना करदा गुनाहों की सजा भुगतोगी? ये मोहतरम अब्बास साहब जो बातें कर रहे हैं और सारा ड्रामा रचा रहे हैं, ये सारे हकीकत खुद अपनी बीवी को क्यों नहीं बता देते? चाय ठंडी हो रही है। शक्कर नहीं डालोगी?
मैं चाय में चीनी कभी नहीं लेती। तुम ये भी भूल गए मेरे बारे में?
हाँ हाँ, मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ तुम्हारी आदतों के बारे में।
थोड़ा सा पी लो बेटा, तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा।
कब से मुझे गुस्सा दिला रही हैं? एक लफ्ज भी सच नहीं कहा कि मुझे इत्मीनान हो जाए।
तुम तो एक बात पर अटक ही गई हो, कोई और रास्ता था मेरे पास? तुम्हारे बाबा ने भी अखबार में इश्तिहार देखा था, फिर उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने इल्तिजा की कि तुम्हें कुछ भी ना बताएं, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर कबूल किया कि मैं खुद उस शख्स को तलाश करूं जिसने ये इश्तिहार दिया। ये वही दिन था, तुम्हें याद है, जिस दिन मैं कालीन बेचने जा रही थी।
सबर करें, सबर करें। चुप हो जाए मामा। आप मुझे इसलिए कह रही थी कि वो कालीन फरोश अब्बू का जानने वाला है।
तो क्या कहती मैं उस वक्त तुमसे? यादें कैसे पीछे पड़ गई थी कि मैं खुद जाऊंगी कालीन बेचने, और फिर तुम उसी दुकान में चली गई, वही हाजी अब्बास की जो शायद तुम्हारे बाबा है।
हाँ? इस डर से वो अंदाजा ना लगाए, कहीं वो तुम्हें ढूंढ ना ले।
मेरी हिम्मत ना हुई उनका सामना करने की, सिर्फ कालीन के बहाने उनकी दुकान पर फोन किया और उनके मुलाजिम से बात की। बड़ी मुश्किल से मैंने इश्तिहार के बारे में पूछा तो मुलाजिम ने कहा जी हाँ, हाजी साहब की 2 साल की बेटी खो गई थी। उसने बताया ये वही हाजी साहब है जिनकी 2 साल की बेटी खो चुकी है, और ये सब सुनकर मैंने फोन काट दिया।
चुप हो जाए मामा, ये जो कुछ भी आप कह रही हैं मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं कैसे यकीन कर लूं मामा?
खातरा साहिबा कह रही हैं कि फोन कर दिया है, वो आ रही हैं।
ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ।
अगर तुम्हें कोई काम है तो जा सकते हो।
नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं भी यहीं बैठा इंतजार कर रहा हूं।
ठीक है, कर लो।
अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए, मैंने आपको यहाँ आने की ज़हमत दी। कई बार आपको फोन किया मगर आपने उठाया नहीं।
माफ कीजिएगा, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था।
क्या तुमने कुछ सोचा?
आइए अंदर चलें। देखें, मुझे बहुत खुशी होगी कि हम अपना बाप बेटी का रिश्ता सबको बता दें। लेकिन हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपकी गुमशुदा बेटी की जगह कभी नहीं ले सकती।
ये दुरुस्त है कि तुम जहरा नहीं हो, लेकिन हो तो मेरी बेटी। लेकिन एक तरह से तो तुम मर्जिया की बेटी भी हुई।
मैं जानती हूँ, लेकिन कई बार मैंने सोचा और इसी नतीजे पर पहुंची कि मर्जिया साहिबा की आंखों में देखकर कैसे झूठ बोल पाऊंगी मैं।
तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और न तुम्हें इसकी जरूरत है। डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी तो सब कुछ वाजे हो जाएगा। ये एक राज है और राज ही रहेगा। और तुम भी ये बात किसी से मत कहना।
ये राज सिर्फ झूठ बोलने से ही छुप सकता है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
माफ कीजिएगा, क्या मैं डॉक्टर साहिबा से बात कर सकता हूँ?
हाँ, क्यों नहीं।
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी शख्सियत, आपकी सच्चाई देखकर आपसे बात करने का हौसला मिला। मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा, आप और मर्जिया की बीमारी को समझते हैं कि वो कितनी बड़ी बीमारी का शिकार है और इस वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर आप मशवरा दें तो हम उसे उसकी बीमारी के बारे में बता दें कि उसे कैंसर जैसी मुजी बीमारी है। बोले
मेरे दोनों बच्चे 3 माह के थे कि खुर्रम शहर में जंग शुरू हो गई। बेटा, उस जंग की वजह से मेरे दोनों बच्चे मर गए और फिर हम बाकी मानदा सामान के साथ अपने वालिद की गाड़ी में वहां से भाग निकले। रास्ते में हमारी गाड़ी पर एक और तोप का गोला आकर गिरा, जिससे हमारा बचा कुचा सामान भी तबाह हो गया। हमने वहां से भाग कर एक करीब के गांव में पनाह ली। कुछ ही देर बाद मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। मैंने सोचा मेरे बच्चे तो मर गए।
बाद में क्या हुआ?
बाद में हमने घर के तंदूर में से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। वो बच्ची तुम थी।
अम्मी, क्या मैं आपको तंदूर के अंदर से मिली थी? आप कोई कहानी सुना रही हैं?
नहीं बेटा, नहीं। तुम्हें शायद वहाँ हिफाजत के लिए रख दिया हो। हम लोगों ने सोचा शायद तुम्हारे घर वालों को मार दिया गया, फिर हम तुम्हें लेकर तेहरान आ गए।
फिर मेरे घर वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की?
की थी। जब जंग खत्म हुई और लोग जिंदगी की तरफ लौटने लगे तो हम दोबारा उस गांव गए। तुम्हारे घर वालों को बहुत तलाश किया, लेकिन वहाँ किसी की बच्ची गुम नहीं हुई थी। और मैं सुबह से शाम तक यही दुआ करती रहती थी कि तुम्हारा कोई घर वाला ना मिले, और अभी भी ऐसा ही है।
अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे ये नहीं दिखाया?
हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले। शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं।
अच्छा तो मम्मा, उस तंदूर और जंग वगैरह की कहानी का, उस कालीन फरोश का क्या वास्ता है?
तुम्हारे खो जाने के डर की वजह से, सिर्फ तुम्हारी खातिर, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं तुम्हारे घर वालों को ढूंढूं या उनके बारे में जानने की कोशिश करूं।
ये क्या बात हुई मम्मा? आप ये सोच रही हैं कि मेरे घर वाले मिल गए तो मैं आप लोगों को फरामोश कर दूंगी? मैं ये नहीं भूली कि आपने मुझे बड़ा किया है।
हाँ मालूम है मेरा बच्चा, लेकिन तुम्हारा रंग क्यों जर्द हो रहा है?
और आपके चेहरे का रंग?
मैं शरबत
नहीं चाहिए, मैं अब चलती हूँ।
कहाँ?
मुझे उन लोगों को तलाश करना है।
अल्लाह रहम करे, मैं इसी वक्त से डरती थी। छोड़ दो, रहने दो मलिया, तुम्हारा बाप भी जेल में है। तुम चली गई बेटा तो मैं बिल्कुल ही तना रह जाऊंगी।
अम्मी जान, परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रही, सिर्फ मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकती।
ठीक है बेटा, ठीक है, कल तुम्हारे पापा के पास भी चलेंगे, फिर जो वो मशवरा देंगे ना वो करेंगे।
अरे अम्मी जान, मुझ पे कल तक इंतजार करने की ताकत नहीं है।
अच्छा सुनो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
मामा आप सामना नहीं कर सकेंगी।
अच्छा तुम रुको, मैं आती हूँ।
अब क्या हो गया?
आओ बेटा।
मैं क्या मैदान जंग जा रही हूँ?
नहीं, मैं चाहती हूँ तुम कुरान की हिफाजत में जाओ। आ जाओ। तुम सलामत रहो।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मैं तो दुकान की वजह से परेशान हो गया हूँ, हर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है।
बात सुने पजमान साहब।
क्या?
जब से आपकी दुकान बंद है सबसे ज्यादा आप ही परेशान हो।
हाँ मैं सोचता हूँ कि मैं बिला वजह परेशान होता हूँ। अब तो दुकान में आने वाले सिर्फ पुलिस और कर्ज ख्वाह रह गए हैं। अगर ये लोग भी ना आए तो कोई हमारी दुकान का दरवाजा भी ना बजाए। मांदू तुम बाबा को फोन करो, कहना कि दुकान पे कोई नहीं है, दुकान पे जल्दी आ जाए। अच्छा रहने दो, मैं खुद कर लूंगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ये तस्वीर आपके पास कहाँ से आई?
ये बच्ची किसकी है?
ये मेरे फूफा की बेटी है, ये बचपन में गुम हो गई थी। क्यों, क्या हुआ?
आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ जानते नहीं। कहाँ गुम हुई थी?
ये खुर्रम शहर।
खुर्रम शहर?
जी।
कैसे गुम हुई थी?
वैसे ही कहानी तो बहुत लंबी है, तुम ये बताओ, लेकिन तुम इस बारे में क्यों जानना चाहती हो?
क्या जानते हैं बताइए, हर वो बात जो आप जानते हैं बता दें, मेहरबानी होगी आपकी।
ठीक है बताता हूँ, पहले आप बैठें, तशरीफ रखें।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर है हबीब?
क्या बताऊं हाजी साहब, आजकल तो बाजार में बड़ा रश है और आप तशरीफ भी नहीं ला रहे।
हाँ आजकल जरा मसरूफ था मैं। दुकान का काम तुम अपने तरीके से एहतियात से करो।
खैरियत है हाजी साहब?
हाँ सब खैरियत है, अगर खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा।
क्या खबर है जनाब?
कहाँ से शुरू करूँ और क्या बताऊँ।
अच्छा तो मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे कि आप मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रही हैं? और आप क्या जहरा को जानती हैं?
नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर ये सब आप क्यों पूछ रही हैं और आपको ये सब बातें कैसे पता चली?
मुझे ये अखबार का टुकड़ा अपनी माँ के पर्स से मिला था जिसमें आपका फोन नंबर था। अभी इस मामले के बारे में आप किसी को कुछ भी ना बताइएगा।
चलें ठीक है, मगर कब तक?
फिलहाल मुझे कुछ और वक्त चाहिए, बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है मुझे अब चलना चाहिए।
ठीक है।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی عباس نظر نہیں آ رہے.
ابھی تو وہ یہیں تھے. آج کل تو دکان بھی بہت کم آ رہے ہیں وہ. یعنی تمہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے؟ یعنی حاجی عباس اور تمہارے بابا نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟
کس بارے میں؟
شاید وقت آئے گا تمہیں بتا دیں گے.
اچھا تو آپ ہی بتا دیں مجھے کیا ہوا ہے.
کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو حاجی صاحب کی بیٹی ملنے والی ہے.
کیا زہرا؟ حاجی عباس کی بیٹی؟
جی جی.
یہ آپ سے کس نے کہا؟
خود انہوں نے بتایا ہے.
تو کیا کہا؟ آپ بتائیے نا مجھے اور کیا کہا انہوں نے.
تمہیں یاد ہے کچھ دن پہلے حاجی صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی تھی جو کئی بار ان سے بات بھی کر چکی ہے. کہہ رہے تھے مجھے کہ یہی ان کی زہرا ہے, لیکن ابھی 100% یہ ثابت نہیں ہوا. اس لیے ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا جس سے معلوم ہو جائے گا. پجمان صاحب کیا ہو گیا؟
ہاں ہاں نہیں نہیں بس ایسا ہی کچھ. وہ میں کچھ سوچ رہا تھا.
سب کچھ بتا دیا.
مجھے یقین نہیں آ رہا, ایسا لگ رہا ہے یہ سب خواب تھا.
کاش یہ سب کچھ خواب ہوتا.
یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟
صرف تمہاری ماں کے لیے.
آخر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو پھر میرا کیا؟
تمہارے لیے ہم نے سب تمہاری خاطر کیا, تاکہ ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہ کھو دیں.
اور ابھی کچھ دیر بھی نہیں ہوئی
بیٹا, تم جب چاہو اپنے خاندان والوں کے پاس جا سکتی ہو.
میرا خاندان؟ اچھا تو اب میرا خاندان ہو گیا. آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں تو ان لوگوں کو چاہتی تک نہیں.
بیٹا تم چاہو نہ چاہو,
لیکن ہے وہ تمہارا ہی خاندان.
یہ خدا کی مرضی تھی کہ تمہارے گھر والے مل گئے. کیا تم ان کے ملنے سے خوش نہیں ہو؟
بابا میں سمیت سے آپ کے پاس آئی تھی کیا آپ مجھ سے بولیں گے یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. بابا میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ مجھ سے کہہ رہے کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں کیونکہ وہ بہت امیر ہیں.
تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میری بچی؟
میری بچی؟ ابھی تو آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں. میں نے بڑی غلطی کی جو یہاں آئی.
بیٹھی رہو ابھی ملاقات
کا وقت ختم نہیں ہوا. جانتی ہو میں کب سے چاہ رہا تھا کہ تم سے
اس بارے میں بات کروں. شاید اگر
آج اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو ہمارے حالات کچھ اور ہوتے.
کس طرح؟ یعنی پھر آپ اسے نہیں کہتے کہ جاؤ کسی اور کی بیٹی بن جاؤ کیونکہ وہ پیسے والے ہیں؟
کس نے کہا پیسوں کی خاطر؟ تم میری بات بالکل نہیں سنتی.
جب سے
تم مجھے ملی ہو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے تمہارے خاندان والوں
کو اب تک ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی.
ماما تو کہہ رہی تھی کہ آپ اس گاؤں میں گئے تھے اور معلومات بھی کی تھی.
گیا تھا
لیکن یہ سب کافی نہیں تھا. کئی بار میں نے چاہا کہ تمہاری تصویر اخباروں میں دے دوں تاکہ تمہارے گھر والے آسانی کے ساتھ مل جاتے.
تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟
میں تمہاری ماں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. میں بھی اس کی طرح تمہیں کھونا
نہیں چاہتا تھا.
جب بھی میں اس بارے میں کچھ کرنا چاہتا تھا تمہاری ماں مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتی تھی. وہ میرے پیروں میں پڑ جاتی تھی. جب تک تمہاری وہ تصویر میں نے اخبار میں نہیں دیکھی تھی میں اطمینان سے تھا. تمہارے سب گھر والے جنگ میں مارے گئے.
جب سے تمہاری وہ تصویر میں نے اخبار میں دیکھی ہے مجھے پتا چلا کہ تمہارے گھر والے تمہارے دیدار سے محروم ہیں.
جب سے میں اپنی سوچ میں خود پر لعنت ملامت کرتا ہوں اور خدا سے اپنی موت کی آرزو کرتا ہوں.
بابا اگر آپ نہ ہوتے اور مجھے نہ اٹھاتے اور مجھے نہ بچاتے ان حالات سے تو میں مر چکی ہوتی.
ہاں صرف یہی چیزیں ہمارے گناہ کم نہیں کرتی. اب تم جاؤ, ہم اس عذاب میں مزید نہ چلیں. تو جاؤ تم ان کو ڈھونڈو, یہ ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے. میری بچی اب بڑی ہو گئی ہے نا.
اب کوئی تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا.
بیٹا اب کوئی تم چھوٹی بچی نہیں ہو کہ وہ تمہیں ہم سے لے لے. میں اپنی جان سے عزیز بیٹی کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں.
وہ کہیں بھی چلی جائے
لیکن نہیں کہ میری دل میں.
نہ رو میری بیٹی, اپنے آنسو پونچھ لے.